नमस्कार भारत, आज है 4 सितंबर, दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित कश्मीर में शांति बहाल करने के इरादे से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज पहुंच रहा है श्रीनगर, लेकिन हुर्रियत ने बातचीत से किया इनकार।
अच्छा होता अगर हुर्रियत से बातचीत हो जाती, लेकिन उन लोगों ने अपना निर्णय लिया और मैं समझता दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है।
चीन में आज से शुरू हो रही है G20 देशों की बैठक, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का चीन और अमेरिका ने किया अनुमोदन, भारत पर रहेगा दबाव।
भारत पर दबाव ये है कि इसी साल हो सकता है भारत को इस प्रकार से रेटिफाई करना पड़े पेरिस समझौते को।
वेटिकन के पोप फ्रांसिस आज मदर टेरेसा को घोषित करेंगे संत, न्यूज मेकर्स में मुलाकात मशहूर निर्देशक महेश भट्ट से। होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले BBC समाचार विस्तार से।
BBC समाचार दिलनवाज पाशा से। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आज एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत प्रशासित कश्मीर पहुंच रहा है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की 2 महीने पहले सुरक्षा बलों के साथ कथित मुठभेड़ में मौत के बाद से ही कश्मीर घाटी में तनाव है। प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने की पूर्व संध्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादी संगठनों को भी वार्ता में शामिल करने की अपील की थी। दक्षिण सूडान पहुंची संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत समांथा पावर ने कहा है कि दक्षिण सूडान की सरकार जुलाई में एक होटल में विदेशियों का बलात्कार करने और सूडानी पत्रकार की हत्या करने वाले हथियारबंद लोगों पर कार्रवाई करे। राजधानी जुबा में हुई हिंसा के लिए सरकारी सैन्य बलों को जिम्मेदार माना जाता रहा है। पावर ने यह भी कहा है कि दक्षिण सूडान में 4,000 अतिरिक्त शांति सैनिक भेजने की दिशा में प्रगति हुई है। पावर ने दक्षिण सूडान से शांति बलों की संख्या बढ़ाए जाने का विरोध खत्म करने का आग्रह भी किया है। वार्ता के बाद दक्षिण सूडान के कैबिनेट मामलों के मंत्री मार्टिन एलिया लुमेरो ने कहा, मैं दक्षिण सूडान के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह अफवाह है कि संयुक्त राष्ट्र इसलिए आया है कि वो हम पर विदेशी सैनिकों को थोपे और दक्षिण सूडान की आज़ादी ले ले। ऐसा नहीं है। यहां दक्षिण सूडान गणराज्य और संयुक्त राष्ट्र के बीच सुरक्षा व्यवस्था सुधारने को लेकर सहयोग हो रहा है ताकि हमारे देश में हिंसा रोकी जा सके। सीरिया में तुर्की समर्थित विद्रोही गुटों ने तुर्की सीमा के नज़दीक अलराय कस्बे के पास 10 गांव से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ दिया है। दो तरफा हमलों में एक ओर से तुर्की के टैंकों ने इस्लामिक स्टेट पर बमबारी की, तो फ्री सीरियन आर्मी के लड़ाके कई महीनों चली लड़ाई में अलराय कस्बे पर कब्जा करने के बाद पश्चिम की ओर से आगे बढ़े। कब्जे से छुड़ाए गए गाँव कस्बे के पूर्व और दक्षिण में हैं। तुर्की को उम्मीद है कि सीरिया में यह दूसरा मोर्चा खोलने से सीमा क्षेत्र से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ा जा सकेगा। वहीं उत्तरी सीरिया में तुर्की समर्थित विद्रोही गुट और अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाके संघर्ष विराम का पालन कर रहे हैं। 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के शिखर सम्मेलन G20 में शामिल होने के लिए दुनिया भर के नेता चीन के हांगझाऊ शहर में जुट रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य मुद्दे वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन है। G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने की पूर्व संध्या अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पर्यावरण पर हुए पेरिस समझौते में औपचारिक रूप से शामिल होने का अहम ऐलान किया। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत प्रशासित कश्मीर में शांति स्थापित करने और विभिन्न पक्षों से बातचीत करने के मकसद से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज श्रीनगर पहुंच रहा है। 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में पिछले लगभग 2 महीने से अशांति है। हिंसा और विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद हुई थी। प्रतिनिधिमंडल की कोशिश रहेगी कि सभी पक्षों से बात कर कश्मीर घाटी के हालात को सामान्य बनाया जाए। हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो इस बातचीत में शामिल नहीं होगा। एक रिपोर्ट के साथ माजिद जहांगीर।
कश्मीर घाटी में दो महीने से जारी तनाव और हिंसा के चलते आज 28 सदस्यों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में दो दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहा है, जहां पर यह दल घाटी के विभिन्न राजनीतिक दलों से कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेगा। हालांकि राजनाथ सिंह उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो उनसे मिलने में दिलचस्पी दिखाएंगे। इस दल को कश्मीर भेजने का फैसला 12 अगस्त को कश्मीर में जारी तनाव और हिंसा के मसले पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक के दौरान लिया गया था। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। दल का कश्मीर पहुंचने से पहले एक दिन शनिवार रात को राज्य के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मीडिया को जारी एक पत्र में कश्मीर के अलगाववादियों के साथ भी बातचीत करने पर जोर दिया है और बताया है कि अलगाववादी नेता अपना समय और जगह चुनकर इस दल के साथ बातचीत करें। तहम अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी गुट के चेयरमैन सईद अलीशाह गिलानी ने दो दिन पहले ही इस बात को साफ किया है कि वो कश्मीर आने वाले दल के साथ ना ही कोई बात करेंगे और ना ही उनसे मिलेंगे। गिलानी ने अपने बयान में कहा है कि वो तभी किसी बातचीत का स्वागत करेंगे जब भारत सरकार कश्मीर को एक विवादित मुद्दा माने और कश्मीर से सेना को निकालने का प्रयास शुरू करे। कश्मीर की व्यापार मंडल कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने भी कश्मीर आने वाले इस दल से मिलने से इनकार किया है। अलायंस के मुखिया मोहम्मद यासीन खान ने BBC को बताया।
राजस्थान के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पे दो दफा इससे पहले आए और उन्हें भी हालात का जायजा लेके यही चीज यहाँ पे पाई कि लोग कोई डेवलपमेंट या किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की बात कर रहे हैं। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम इस डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ फोटो सेशन होगा और हमें एंगेज करने वाली बात होगी।
गौरतलब है कि पिछले दो महीनों से कश्मीर में जारी हिंसा और तनाव के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज तीसरी बार कश्मीर आ रहे हैं। वर्ष 2010 में भी जब कश्मीर में हालात खराब हुए थे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कश्मीर आया था। इस दल के कश्मीर पहुंचने से पहले दक्षिणी कश्मीर में एक युवक की जड़पों में पैलेट और टेल गैस शेल लगने से मौत हुई है। घाटी में बीते 8 जुलाई को उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए थे जब हिजबुल मुजाहिदीन के चरमपंथी बुरहान वानी की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। बुरहान वानी की मौत के बाद बीते दो महीनों में अब तक घाटी में सुरक्षा बलों पुलिस और सेना की कार्रवाई में 72 लोगों की जाने गई हैं, जिनमें बड़ी संख्या युवाओं की है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। कश्मीर में पिछले हफ्ते 51 दिन के बाद कर्फ्यू हटाया गया है। तहम अलगाववादियों की बंदकाल पिछले दो महीनों से जारी है। अब देखना यह होगा कि कश्मीर आने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल सुलग रहे कश्मीर को ठंडा करने में कोई भूमिका निभा पाएंगे या नहीं, इसका सबको इंतजार है। माजिद जहांगीर, BBC हिंदी, श्रीनगर।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कश्मीर की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले डॉक्टर कर्ण सिंह से हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बात की और पूछा कि उन्हें सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से कितनी उम्मीद है।
ये लोग जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज जा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं, हमारी पार्टी से गुलाम नबी आजाद रोटी हैं राज्यसभा में, और खड़गे जी जा रहे हैं, शरद पवार जा रहे हैं, शरद यादव जा रहे हैं इत्यादि। तो वहाँ मैंने अखबार में पढ़ा था कि हुर्रियत वालों ने ऐलान किया कि वो नहीं मिलेंगे, तो अब नहीं मिलेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है।
अगर इस तरह की पहल एक बार सरकार कर रही है कि वो कह रही है कि सभी पक्षों से बातचीत होगी और उसके बाद अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहती है कि वो बातचीत नहीं करना चाहती है, तो इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? फिर
और किसी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि सवाल यह है कि अच्छा होता अगर हुर्रियत से बातचीत हो जाती, लेकिन उन लोगों ने अपना निर्णय लिया और मैं समझता दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। अगर उनका कोई भी पक्ष हो तो बात करने से वो अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। कुछ मैंने सुना कि व्यक्तिगत जो लोग इसमें जा रहे हैं प्रतिनिधि मंडल में, वो मिलना चाहेंगे या मिलने जाएंगे, ऐसा सुन रहा हूँ
जी। क्योंकि आप भी कश्मीर गए हुए थे और आप जैसा कि बता रहे हैं कि
घर रहा
जी,
मैं तो अपने घर
आपने आपने भी कुछ लोगों से
मुझे लोग मिलने आए
जी उनका क्या कहना था कि वो क्या चाहते हैं? क्योंकि आम जनता एक तरफ दिखाई दे रही है कि वो नहीं चाहती है कि इस तरह की हिंसा हो, प्रदर्शन हो, इस तरह का तनाव हो, उनके सामान्य जीवन पर इसका बहुत असर पड़ता है,
बहुत असर पड़ रहा है। सारी शैक्षणिक संस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं, प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है उस समय, तो उसका कोई समाधान तो निकालना चाहिए। सर्वदलीय बैठक जो जा रही है, आशा तो है कि कोई ना कोई इससे बात निकलेगी।
ये बताइए डॉक्टर साहब कि अब जिस तरह की पहल सरकार ने की है कि एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, क्या ये काफी है या आपको लगता है कि कुछ और भी किया जाना चाहिए था?
नहीं, ये तो एक उसमें से एक पड़ाव है, क्योंकि जब पहले ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हुई थी, हमने राज्यसभा में जब बहस हुई थी तो हम ही ने कहा कहा था ऑल पार्टी डेलीगेशन, मैंने कहा था विजय थोड़ा पृष्ठभूमि पहले तैयार कर लो फिर जाना। फिर जब यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी, तब भी लोगों ने कहा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, तो अब जा रही है ऑल पार्टी डेलीगेशन। इसके अलावा केवल इससे तो मसला हल नहीं होगा, लेकिन ये एक पड़ाव है, अगर बातचीत हो जाती है या कोई विचारधारा निकलती है तो अच्छा।
जी आपको स्वागत करता हूँ। जी आपको याद होगा कि जब यूपीए सरकार थी उस समय भी एक 3 सदस्यीय इंटरलोक्यूटर की टीम बनाई गई थी।
इंटरलोक्यूटर वो तो 1.5 साल रहे, वो तो फुल टाइम काम कर रहे थे, लेकिन एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी गया था पहले भी। ये तो एक दिन की विजिट होती है ना, जो इंटरलॉक्यूटर से उन्होंने तो 1.5 साल पूरा करके अपनी रिपोर्ट बनाई।
जी
तो बहुत सारे इस किस्म की पहल की गई है
जी, लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिखाई दिया।
अभी तक कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका कोई कार्यान्वित भी नहीं हुआ ना कोई खास अभी।
तो कहीं ना कहीं
ये पूर्ण परिस्थिति है, ये इसमें कोई शक नहीं।
जी कहीं ना कहीं
चिंताजनक परिस्थिति।
जी चिंताजनक परिस्थिति है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की कमी नहीं दिखाई देती है फिर? ये यूपीए सरकार के दौरान भी कोशिश हुई, अब जो है अभी एनडीए
इसकी नहीं है, इसमें मूल्यांकन क्या करूं मैं। राजनीतिक दल तो सब इसमें इकट्ठे ही हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है, उन सारों ने ये ऐलान किया कि हम भारत सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, इसमें कोई दल नीति नहीं है। रेडियो के ऊपर क्या बात करें उसके बारे में, आप जानते हैं बड़ा पेचीदा मसला है।
जी इस बीच जो राज्य की मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी कहा है कि हर तबके से बातचीत होनी चाहिए समाज की, उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी शामिल होना चाहिए।
हाँ तो सभी ने कहा, हमने भी यही कहा कि सबसे बात करो,
लेकिन सरकार की तरफ अभी तक साफ तौर पर यह नहीं कहा गया। उन्होंने सभी पक्षों की बात कही है कि सभी पक्षों से बातचीत होगी।
सब पक्ष आए तो जो आना चाहे मिलना चाहे मिले।
ये थे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर कर्ण सिंह, जो मानते हैं कि हुर्रियत भी अगर बातचीत में शामिल होती तो बेहतर होता।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
चीन के हांगजाओ शहर में आज से 2 दिन का G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था की हालत और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा करेंगे। सम्मेलन से पहले ही अमेरिका और चीन ने जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस में हुए समझौते का अनुमोदन कर दिया है। ये दोनों देश 40% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले साल दिसंबर में पेरिस में इस बात पर सहमति बनी थी कि उत्सर्जन में कमी लाकर वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे ही रखा जाएगा। समझौते को अमल में लाने के लिए जरूरी है कि 55 देश इसका अनुमोदन करें। अभी तक 23 देशों ने इस पर सहमति की मुहर लगाई है। भारत ने अभी तक पेरिस समझौते का अनुमोदन नहीं किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। हमारी सहयोगी सुशीला सिंह ने बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार साइबल दासगुप्ता से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि जलवायु समझौते को लेकर भारत पर कैसा दबाव रहेगा।
पहले तो भारत के लिए ये एक प्रकार का सरप्राइज है। भारत को पता था कि अमेरिका तो राजी हो जाएगी, लेकिन चाइना जो भारत के साथ था और अमेरिका के विरोध में समझौते में, वो अमेरिका के साथ थे और फिर भारत को अकेला छोड़ दे, ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा दबाव है। और भारत पर दबाव ये है कि इसी साल हो सकता है भारत को इस प्रकार से रेटिफाई करना पड़े पेरिस समझौते को, और भारत ने ये कहा कि हम तैयार नहीं है। अरविंद पाणिग्रही जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत कानूनी मामले हैं जो भारत को सुलझाने हैं और इतने कम समय में भारत ये करने को तैयार नहीं है। तो ये एक देश है जो तैयार नहीं है, और जो जॉइंट कम्युनिकेशन G20 में निकलेगा, जो G20 की जो मीटिंग आज सुबह शुरू होने वाली है, उसमें ये साफ साफ कह दिया जाएगा कि कई देश जैसे कि भारत है जो तैयार नहीं है, उनको ज्यादा समय दिया जाएगा। तो इस तरह से भारत को थोड़ी छूट तो मिलेगी, लेकिन भारत पर अब दबाव बना रहेगा क्योंकि अमेरिका के साथ चीन ने हाथ जोड़ लिया है इस क्लाइमेट समझौता के मसले में।
भारत और वियतनाम ने 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, और दक्षिण चीन सागर की अगर बात की जाए तो चीन और वियतनाम में एक तरह की तनातनी है इस मुद्दे पर। तो भारत और वियतनाम जिस तरह से करीब आए हैं, उसे चीन किस तरह से देख रहा है?
तो चीन के ऊपर कई दबाव आ रहे हैं। चीन कदापि ये नहीं चाह रहा था कि भारत के कुछ ऐसे दोस्त बने जो चीन से लड़ रहे हैं। जैसे भारत और वियतनाम में दोस्ती चीन के लिए जहर है, भारत और जापान में दोस्ती चीन के लिए जहर है, क्योंकि जापान और वियतनाम ये सारे देश ऐसे हैं जो चीन के साथ लड़ रहे हैं साउथ चाइना सी दक्षिणी महासागर को लेकर। तो उसमें चीन हमेशा ये कहती आई है कि ये तो आपके एरिया के बाहर है, आप इसमें क्यों आ रहे हैं। अब मोदी जी यहाँ हांगझो यानी कि चीन में आने से पहले वियतनाम में गए हैं, उनको वहाँ जाना ही चीन को ये संकेत देना है कि हम आसानी से आपकी बातें नहीं मानेंगे, हमारी कई बातें हैं जो आप नहीं माने हैं। जब एनएसजी में हम मेंबर बनना चाह रहे थे तो आपने रोक दिया, जो भारत पे आक्रमण करते हैं ऐसे टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं के बचाव में आप यूनाइटेड नेशंस में उनको ब्लैकलिस्ट हमें नहीं करने देते, हम कुछ भी चाहते हैं आप उसे हम पर रोक लाते हैं, लेकिन हम अगर किसी से दोस्ती करने जाते वो आपको अच्छा नहीं लगता, इस चीज को बताने के लिए ही वो वियतनाम गए।
वहीं आज जो है चीन के हांगझोंग शहर में जो है G20 का सम्मेलन शुरू होगा, किन किन नेताओं की मुलाकात हो सकती है? आज
सुबह मोदी साहब जाएंगे, शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात होगी और भारत और चीन रिश्ते की कई बातें उस पर चर्चा होगी, और उसके बाद ब्रिक्स की समिट है जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की जो मीटिंग है ब्रिक्स की उसका उद्घाटन होगा, तो उसमें मोदी साहब जाएंगे, और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं मोदी साहब, अर्जेंटीना के लीडर से मिल रहे हैं, ब्राजील के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, दुनिया के 5 देशों के नेताओं के साथ आज मुलाकात होगी, लेकिन ओबामा साहब के साथ मुलाकात होने की संभावना नहीं है, और पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है उनके साथ हो सकता है कुछ देर के लिए मुलाकात हो।
ये थे बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दासगुप्ता। वेटिकन के पोप फ्रांसिस आज सेंट पीटर स्क्वायर में मदर टेरेसा को संत घोषित करेंगे। मैसेडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। भारत को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली मदर टेरेसा को गरीबों और लाचारों की सेवा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था और अब वो संत होने जा रही हैं। हमारी सहयोगी प्रतीक्षा घिल्डियाल ने अरसे तक मदर टेरेसा के साथ रही और उनकी दोस्त सुनीता कुमार से बात की।
मैं 30 साल से उनके साथ थी और 67 से जानना शुरू किया और मैं उनको काफ़ी क्लोज से जानना हो गया क्योंकि वो मदर फ्रेंड के माफिक बन गई, तो उनसे मैं हर चीज़ की बात करती थी, मतलब कोई प्रॉब्लम हुए तो मैं उनको जाके पूछती थी, चाहे अपने पर्सनल प्रॉब्लम से भी, और शी वॉज़ अ रियल, यू नो, उनका काम देख के भी हम चौंक जाते थे कि पता नहीं ऐसी एनर्जी कहाँ से है, तो फिर मैं जब पूछती थी कि आपको, आप थकते नहीं हैं, आप सारा दिन काम करते हैं तो विदाउट एनी रेस्ट, तो वो बोलती थी हाँ मैं अपना टैंक प्रेयर से भर देती हूँ।
तो लेकिन ये बताइए कि कलकत्ता में ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने इसी को अपना घर बना लिया?
मदर आई थिंक वो जहाँ से आई थी वहाँ ऐसा प्यार भी नहीं देखा होगा, तो लोगों का प्यार भी तो पहचान जाते हैं ना, अगर आप मुझे नहीं, मुझे फीलिंग हो कि आप मुझे नहीं अच्छे लग रहे, मतलब मैं नहीं अच्छी लग रही आपको, तो मुझे पता तो चल जाएगा ना, सो वो भी मेरा ख्याल पहचान गए।
तो कलकत्ता के लोगों ने उन्हें किस तरह अपनाया, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का प्यार उन्हें यहाँ मिला उन्होंने इसको यहाँ घर बना लिया, ऐसा क्यों हुआ?
बिकॉज उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो पूरा फोकस गरीबों के लिए होगा, उनके देखभाल के लिए, और उनको प्यार और खाना पीना जो भी सब कुछ देंगे, और जो कर सकते थे उन्होंने गरीबों के लिए किया, तो फिर यही घर बन गया। वो वापस तो नहीं गए, एक दिन के लिए भी नहीं गई, अब उनकी मदर की भी डेथ हो गई और उसके लिए भी नहीं जा सकी।
ये थी लंबे अरसे तक मदर टेरेसा के साथ रही और उनकी दोस्त सुनीता कुमार, और उनसे बात कर रही थी प्रतीक्षा घिल्डियाल।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिलनवाज क्या कह रहे हैं आज के अखबार, बहुत सारे अखबार आप देख रहे हैं?
जी, आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज श्रीनगर पहुंच रहा है, उससे जुड़ी खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बताए जाते हैं सैयद सलाउद्दीन, उनके बयान को प्रमुखता से छापा है और लिखा है कि हम कश्मीर में आत्मघाती हमलावरों की बाढ़ ला देंगे और लहू से नहला देंगे। बहुत ही एक सनसनीखेज खबर वहाँ से शीर्षक बनाया है संडे टाइम्स ने इसको। इसके अलावा कल आम आदमी पार्टी के जो हिरासत में लिए गए मंत्री संदीप कुमार हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कथित वीडियो में उनके साथ महिला दिखी थी, उन्होंने ही उन पर अब बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया है। ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा मदर टेरेसा को आज वेटिकन में संत का दर्जा दिया जाएगा, ये खबर भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। अमर उजाला में एक तस्वीर छपी है अमिताभ बच्चन की झाड़ू लगाते हुए, ये मुंबई से है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत तो ये सफाई कर रहे थे। इस पर शीर्षक लगाया है टोकरी ली झाड़ू उठाई और सफाई में जुट गए अमिताभ बच्चन। इसके अलावा एक और खबर है, आपने पिछले दो तीन दिन में अगर आप खबरें देख रहे हैं तो डाटा इंटरनेट मोबाइल ये शब्द काफ़ी आ रहा है, क्योंकि रिलायंस ने अपना एक जियो सिम लॉन्च किया है, लोगों को फ्री में दिया जा रहा है। अब BSNL ने उसको टक्कर देने के लिए एक प्लान लॉन्च किया है जिसके तहत 83 पैसे में 1 GB डाटा ब्रॉडबैंड पे दिया जाएगा, यानी अपनी दरें बहुत सस्ती BSNL ने कर दी है। ये खबर भी अमर उजाला में पहले पन्ने पर है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में भारत में मोबाइल बैंकिंग का बाजार बहुत बड़ा है, दैनिक भास्कर ने एक विशेष खबर इस पर दी है और बताया है कि न कार्ड न कैश सरकार के UPI ऐप से और बढ़ेगा ट्रेंड, यानी भारत सरकार एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आ रही है जिससे बाजार में लोग मोबाइल के जरिए ही बिना ATM बिना कैश के ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ये भारत सरकार का एक एप्लीकेशन होगा और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लोगों का मोबाइल से ख़रीदारी करने का तरीका बदल देगा और जो बाज़ार है इसको और बड़ा कर देगा
जी।
इसके अलावा कल जमीन घोटाले में हरियाणा के पूर्व CM हुड्डा के घर पर CBI ने छापेमारी की थी, ये खबर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए दिलनवाज। आगे बढ़ते हैं और अब समय है BBC न्यूज मेकर का, जहां जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म मेकर महेश भट्ट से, जो आजकल अपनी आने वाली फिल्म राज रिबूट के प्रमोशन में व्यस्त हैं। BBC के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने बताया कि असफलताओं ने कैसे कामयाब होने में उनकी मदद की है।
इस महीने रिलीज होगी इमरान हाशमी और कृति खरबंदा स्टारर राज रिबूट। राज फ्रेंचाइजी की ये चौथी फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं विक्रम भट्ट और प्रोड्यूस कर रहे हैं मुकेश भट्ट और महेश भट्ट। और इस बार न्यूज मेकर्स में मुलाकात महेश भट्ट से। मैं हूँ आपके साथ सुमिरन।
रोमानिया, रेहान और मैं पहली बार यहीं मिले थे, यहीं प्यार हुआ और यहीं वो राज राज बने।
घर का 6 महीने का एडवांस दे चुकी है कंपनी, अब मैं उन्हें ये नहीं बोल सकता कि मेरी बीवी को या भूत दिखता है तो हमें दूसरा घर दो।
महेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका BBC न्यूज मेकर्स में। ये बताइए कि राज रिबूट क्यों?
तो बहुत ही अच्छी स्टोरी मिल जाती है आपको और आपके पास फ्रेंचाइज जो आपने 14 साल लगा दिए क्रिएट करने को और जिस फ्रेंचाइज की पहुँच काफी गहरी है और हॉरर का एक मिश्रण आप करके एक अनोखे स्पेस में कुछ नए किरदार क्रिएट करके 15 साल तक जो फ्रेंचाइज परफॉर्म करती है, लास्ट फ्रेंचाइज जो थी हमारी राज की, उसने ऑलमोस्ट 85-90 करोड़ का बिजनेस किया था, इसमें बिपाशा थी।
चलिए, ये बात तो हो गई उस फिल्म की जिसे आप बना रहे हैं, जिसके प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व हैं। सुनने में आया है कि एक फिल्म आप पर भी बन रही है।
हमारी बच्ची कुछ कर रही है सुना, पूजा बना रही है कुछ बायोपिक, मगर वो अपनी ही बनाएगी क्योंकि बेटी देखेगी बाप को, तो वो बेटी है, उसका अधिकार है। अब वो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, तुम अपने बाप के बारे में मत बनाओ। तो जैसा उसने मुझे देखा, जैसा मुझे महसूस किया, जैसा मेरे को उसके अनुभव उसके आधार पे वो एक मेरी दास्तान कहने की कोशिश करी और मेरी कहानी मुझे खुद समझ तो आ जाए पहले।
झुकी झुकी सी नजर बेकरार है नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में प्यार है ते नहीं।
उतार चढ़ाव देखे हैं आपने, अब तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा है?
हार्ड मास के इंसान है, गिरते पड़ते भी हाथ पहुंचे हैं, गिरे ज्यादा हैं, जीते कम हैं। आई हैव फेल्ड माय वे टू सक्सेस, तो मुझे फेलियर से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि फेलियर तो आपको बनाता है, वो आपको एक अदा देता है, आपको एक तेवर देता है। जो फेलियर से आंख बिचोली खेलते हैं वो कामयाब नहीं बनते, जो फेलियर से आंख मिलाते हैं उसके अंदर ही जिंदगी कुछ उंडेलती है अपना रंग, और फिर उसका रंग जो है सड़ चढ़ के बोलता है, एक इंसान होने का एहसास दोबारा आ जाता है कि साहब छोड़ो भी यार, इतना भी तुम अपने आप को समझो मत।
ये तो पर्सनल लाइफ के बारे में आपने बताया, प्रोफेशनली आपने इस इंडस्ट्री में कितने और कैसे बदलाव देखे हैं?
1971 में हमने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तो उस दौर में फिल्में देखने का, फिल्में बनाने का अंदाज बिल्कुल अलग था, फिल्म देखना और बनाने का तरीका ही अलग था। मगर फिर जब से इंसान ने डिजिटल स्पेस में प्रवेश किया है तो डिजिटल एज ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। केवल फिल्म बनाने और देखने के तरीके का नहीं, मगर हमारी ज़िंदगी में बहुत क्रांति घटी है। आज की तारीख में फिल्में बनाना आसान तो हो गया भाई इन मेनी वेज, मगर लोगों को सिनेमा हॉल में लाना इतना मुश्किल कभी नहीं था जितना आज की तारीख में, क्योंकि समंदर है एंटरटेनमेंट का। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने जानकार लोग हैं वो बिल्कुल असहमे हुए हैं।
ये थे फिल्म मेकर महेश भट्ट और उनसे बात कर रही थी सुमिरन प्रीत कौर। और अब चर्चा खेलों की, अमेरिकन ओपन टेनिस में क्या कुछ चल रहा है और संन्यास से वापस लौटे फुटबॉल स्टार मेसी को कहां लगी चोट, बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट अमरीकी ओपन अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। कोर्ट पर पसीना बहाते खिलाड़ियों के बीच शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच, चौथी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल चौथे दौर में पहुंच चुके हैं। चौथे दौर में राफेल नडाल का सामना 24वीं वरीयता वाले फ्रांस के लुकास पावले से होगा, जबकि नोवाक जोकोविच ब्रिटेन के कायल एडमंड का सामना करेंगे। वैसे पुरुष एकल वर्ग में एक बड़ा उलटफेर तब हुआ जब 7वीं वरीयता हासिल क्रोएशिया के मारिन चिलिच 26वीं वरीयता हासिल अमेरिका के जैक सॉक से 6-4, 6-3, 6-3 से हारकर बाहर हो गए। अब जैक सॉक चौथे दौर में 9वीं वरीयता हासिल फ्रांस के जो विल्फ्रिंड सोंगा से टकराएंगे। महिला एकल वर्ग में डेनमार्क की कैरोलिना वोज़नियाकी की जीत का सिलसिला जारी है। तीसरे दौर में रोमानिया की मोनिका निकोलेस्क्यू से 6-3, 6-1 से जीतने के बाद अब उनके रास्ते में 8वीं वरीयता हासिल अमेरिका की मेडिसन केस रोड़ा अटकाने के लिए तैयार है। हालांकि खुद मेडिसन केस को तीसरे दौर में जापान की नाओमी ओसाका को हराने के लिए जी जान एक करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वो 7-5, 4-6, 7-6 से जीत सकी। लेकिन दूसरी वरीयता हासिल जर्मनी की अंजलिक कर्बर को अमेरिका की बिलिस को हराने में दम नहीं लगाना पड़ा और वो आसानी से 6-1, 6-1 से जीत गई। अब चौथे दौर में उनका सामना चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा से होगा। इसी बीच भारत के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा है कि अगर भारत को ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनना है तो लक्ष्य की तरफ सही प्रक्रिया से आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा हर सीरीज के लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। रोहित शर्मा ने कहा कि टीम वेस्टइंडीज से कामयाबी हासिल कर वापस लौटी है और वो अपनी इसी लय को बनाए रखना चाहेगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास तोड़कर वापस टीम में लौटकर उरुग्वे के खिलाफ गोल ठोककर अपनी टीम अर्जेंटीना को जिताने वाले स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी अब चोट के कारण मंगलवार को वेनेजुएला के खिलाफ होने वाले साल 2018 विश्व कप क्वालिफायर मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
ये थे आदेश कुमार गुप्त। अब सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आज एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत प्रशासित कश्मीर पहुंच रहा है। सीरिया में तुर्क समर्थित विद्रोही गुटों ने तुर्की सीमा के नजदीक अलराय कस्बे के पास के 10 गांव से इस्लामिक स्टेट को खदेड़ दिया है। 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के शिखर सम्मेलन G20 में शामिल होने के लिए दुनिया भर के नेता चीन के हांगझाऊ शहर में जुट रहे हैं। बांग्लादेश ने देश के शीर्ष उद्योगपतियों में शुमार और सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी के नेता मीर कासिम अली को युद्ध अपराधों के लिए फांसी दे दी है। हांगकांग में विधान परिषद चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है और अमेरिका के अटलांटिक तट पर आए समुद्री तूफान के और तेज हो जाने की आशंका है। इसके मद्देनजर कई सुरक्षा चेतावनियां जारी की गई हैं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने काले समुदाय से वादा किया है कि वो अफ्रीकी अमरीकी समुदाय के सामने पेश चुनौतियों को ठीक कर देंगे। माली के रक्षा मंत्री को हटा दिया गया है। मोटरसाइकिलों पर आए जिहादियों के एक शहर पर कब्जा करने के बाद यह कार्रवाई हुई है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से बस थोड़ी ही देर बाद विश्व भारती में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया शाकिर आलम ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और दुनिया भर की तमाम खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।